शांति ओम शांति ओम शांति ओम प्रेम ओम प्रेम ओम आनंद ओम आनंद परमानंद ओम परमानंद परमपिता परमात्मा की महिमा अपरमपार है। हर दिन बाबा के महावाक्य विशेष है और बाबा जो भक्ति मार्ग में है कि ईश्वर के रूप अनेक है तो बाबा अनेक पार्ट प्ले करते हैं, जैसा पार्ट वैसा रूप। बिंदु स्वरूप रहता है हमेशा, बिंदु है सिंधु है, सागर है रत्नागर है, बीज रूप है रचिता है, आदि मध्यंत का ज्ञान देने वाला ज्ञान सूर्य है। अद्वैत के ड्रामा में बाबा बहुरूपी है, संबंध में तो हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, वो गहरा इतना अनुभव भक्ति मार्ग में भी। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वो मेरे सर्व संबंध में, वो संबंध जोड़ने के लिए आते हैं। तो आज बाबा ने आपको, हम सबको इस हॉल में किस लिए बुलाया है? आज आप थिएटर में आए हैं परफॉर्मेंस देखने के लिए। आज बाबा बहुत ही सुंदर स्वरूप से कहे, अपने स्वरूप का हम आनंद ले रहे, बाबा के स्वरूप का सुख अनुभव करे, एंटरटेनिंग रूप है। तो आज बाबा डांसिंग गर्ल बन के आए हैं। ये तो मेरा पर्सनल अनुभव है। दिल्ली में बाबा आए हुए थे मेजर की कोठी में, तो उस समय तो मास्टर हिज मास्टर वाइस ड्रामा का वो जो रिकॉर्ड बजाते हैं ना, 3 मिनट का रिकॉर्ड, फिर तो वो रिकॉर्ड बजता है, ये वो शुरू के गीत वो ही है। तो उस दिन का रिकॉर्ड था, जो बहन बजाने वाली थी वो बहनों को तितली कहते थे, बचपन से बाबा के पास आई थी, उनमें से एक की ड्यूटी थी। वो देखा बाबा आ गए हैं पर वो बहन नहीं आई है, तो मैं तो सामने ही बैठती थी, मैंने सोचा चलो मैं बजा देती हूँ। मैं बैठी सामने, बाबा ने दृष्टि दी, कहा बच्ची एक एक लाइन बजाओ सिर्फ, और बाबा गीत का अर्थ करेंगे लाइन बाय लाइन। अब वो तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड टेप तो नहीं है जो स्टॉप कर दो और फिर चलाओ। मैंने सुई उठाई, गीत था तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, कोरस सॉन्ग है, बार बार ही आता है इसी के बीच में। मैंने बजाया, दो लाइन बजाई, बाबा ने 5-7 मिनट बोला, फिर मैंने रखी सुई, फिर यही बजा तुम ही हो माता पिता तुम ही। तो ठीक है, बाबा ने बड़ी गंभीरता से और स्वीकार करते हुए मेरी इग्नोरेंस कंटिन्यू किया। तीसरी बारी बजाया, सुई फिर वही उठा के तो दूर रखी, पर फिर वही बजा, तो बहुत प्यार से कहा बुद्धू डांसिंग बाबा है डांसिंग गर्ल, और तुम हो म्यूजिशियन म्यूजिक बजाने वाला, अगर म्यूजिक राइट टाइम पर न बजावे तो डांसिंग गर्ल डांस कैसे करे। वो मेरे को तो नशा चढ़ गया, मैं म्यूजिशियन हूं, मेरी ट्यून पर बाबा डांस करता है। खैर उसके बाद तो बाबा को जाना था, तो कानपुर में थे तो फोन पर, कहानी लंबी है पर सार यही है। तो मेरे को तो नशा था सारे दिन का, और हमारी क्लास के एक स्टूडेंट को फीलिंग आ गई, कहा ये क्या बाबा ने सबके सामने तुमको बुद्धू कहा। मैंने कहा भाई आप सचमुच बुद्धू हो, भगवान ने हक दिखाया, हक है प्यार करने का, हक है तो सुधार करने का भी हक है, मुझे सिखाया तो मैं बड़ी एक्टिव हो गई एक्चुअली, तो समझ गई, पहले उंगली रखी फिर सुई उठाई, और वही उंगली रखी रखी और फिर रखी तो ठीक बजा सारा रिकॉर्ड। क्या उस भाई को मनी चाहता क्लास का दिल्ली रजौरी गार्डन में की बात है, बाबा तो मेजर की कोठी में थे उस समय, 60s की बात है। तो सारा दिन नशा रहा, वो कहा कि बाबा ने तुमको ये कह दिया, मैंने कहा हक है ना, उनको प्यार करते हैं तो सुधार भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, सीख लिया कितना अलर्ट होना चाहिए। फिर बाबा को, बाबा कलकत्ता कानपुर गए थे, वहां से फोन किया, दीदी को फिर बात करनी थी, दीदी ने बात की, फिर बाबा ने मुझे दोबारा बुलाया, कहा सुदेश बच्ची को बुलाओ, तो दीदी ने कहा बाबा बुलाना चाहते। तो उस समय ये सॉन्ग टेलीफोन लैंडलाइन होती थी, आवाज बहुत जोर से करनी पड़ती थी, तो का कौन बोल रहे हैं, बाबा को शोर था। तो मैंने कहा बाबा आपकी बुद्धू बच्ची बोल रही हूं, बाबा ने कहा तुम बुद्धू नहीं, तुम बुद्धिमान बच्ची हो, तो वरदान मिल गया। जितने प्यार से कहा उतना ही अधिकार से कहा, और हमने वो नशा स्वीकार किया, तो मुझे यही नशा रहता है, मैं ही ट्यून पर डांसिंग गर्ल डांस करती हूँ। पर ये कोई दूसरे समय का है, मतलब ये दिल्ली वाली मुरली नहीं है। ओम शांति। जो भी 21 तारीख की 21 अप्रैल की मुरली है, मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने, तुम होशियार डांस देखने वाले, सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो? संगम युग में आपकी हॉबी कौन सी है? आप चेक करो आपकी हॉबी क्या है, कुछ खाने पीने की, थोड़ा घूमने की, हॉबी कौन सी है? तो बाबा ने कहा कौन सी हॉबी बेस्ट हॉबी है, याद में रहने की रूहानी हॉबी। समझा कौन सी हॉबी होनी चाहिए? याद में रहने की रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ ही तुम दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। ऐसी हॉबी हो याद भी रहे, दिव्य और अलौकिक कर्म भी करे। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है, तो सर्विस की भी तुम बच्चों को हॉबी होनी चाहिए, सेवा करने की भी हॉबी होनी चाहिए और याद की भी हॉबी होनी चाहिए। गीता, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, यानी कंडीशन मेरी कैसी है, ये कब बीमारी छूटेगी। वो तो शरीर के हद के बीमारी की बात पूछते हैं और बाबा अंदर की बीमारियां कौन सी है। ये सारा दुनिया हॉस्पिटल है, वो जो बीमारी के लिए लौकिक हॉस्पिटल में हद की बातें पूछते हैं, ये तो बेहद की बात है। तो बाप आकर बच्चों को राय देते हैं, ये तो बच्चे जान चुके हैं कि बराबर ये खेल सुख और दुख का है, ये खेल है। यूं तो बच्चों को सतयुग में जाने से भी ज्यादा अच्छा कौन सा है, फायदा किस कब है, कमाई इस समय है, तो जस्ती फायदा यहां है। अच्छा, अब इसमें इस संगम युग में सतयुग में जो नहीं होगा वो इस समय कौन सा फायदा है, वो देवताओं को फायदा नहीं होता, कौन सा फायदा है। इस समय हम ईश्वरीय गोद में बैठे हैं, ईश्वरीय औलाद है। इस समय हमारी महिमा गुप्त है और महिमा ऊंचे से ऊंची है। भगवान के बच्चे डायरेक्ट उनकी पालना लेने वाले, मनुष्य मात्र बाप को फिर ईश्वर भगवान भी कहते हैं परंतु जानते नहीं है और बुलाते भी रहते हैं। रामानुसार ऐसा ही हुआ है, अज्ञान और ज्ञान, दिन और रात आत्मा बुलाते रहते हैं, गाते भी हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को कौन सी अज्ञानता है, अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है। विकारी तमो प्रधान बन गए हैं जो बीमारी को समझते ही नहीं, और फिर जो बाप से वर्षा लेना चाहिए, एक बाप का बच्चा बने तो अधिकारी बने ना, नहीं तो भिखारी रहेगा। तो तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके ना। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधेरे में थे, अज्ञान अंधकार में थे, अभी बाप आए हैं, कितना सोजरा मिला है, कितनी रोशनी मिली है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वो कोई वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है, परमात्मा की नॉलेज ऊंचे से ऊंची नॉलेज है। तो बाप सिद्ध करके बताते हैं, तुम बच्चों को गॉड इज लाइट, ज्ञान का सूर्य, तो बाप कौन सी रोशनी देते हैं जो शास्त्रों में या किसी धर्म वालों के पास नहीं है। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि, मध्य और अंत की रोशनी देता हूं। अच्छा भला वो तो तुम्हारे पास रहनी चाहिए, वो तुमने प्रलब्ध पाई, सतयुग में ये याद नहीं रहेगा, टक्कर का ज्ञान नहीं रहेगा, प्रलोप हो जाएगा। द्वापर कलयुग में आते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग मिक्सचर है, सत्यता नहीं रहती। तो बाप कहते हैं रचता और रचना के आदि मंत्र की रोशनी जो तुमको देता हूं वो फिर प्राय लोप हो जाती है, प्राय यादगार रहती है, मिक्सचर हो गया उसमें, प्राय लोप मतलब निशानियां हैं पर रियलिटी नहीं है। स्क्रिप्चर्स हैं, रिचुअल्स हैं, पर स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी की रियलिटी नहीं है। अब वो मुझे फिर आके बताना पड़ता है, तो फिर मेरे बगैर जब तक मैं ज्ञान न दूं किसी को मिल नहीं सकता ये ज्ञान, तो ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है जैसे ही टाइम मूव करता है। अब समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, ये नई बात है, ये शास्त्रों में नहीं है। बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबर वार हैं। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं बाबा के सामने, तो बाबा क्लास में अगर अच्छे बैठे होते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसे चलता है, डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले शौकीन होते हैं तो वो खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। थोड़े बैठे होते हैं तो कॉमन रीति से डांस करती है। एक बार बाबा ने कहा वो झुटका खा रहे हो बैठने वाले, तो डांस तुम गल कहेगा फालतू है यहां डांस कर। तो इसीलिए मैं तुमको अलर्ट करता हूं, एंटरटेन करता हूं, तो खुशी से बैठ सुनो ना। थोड़े बैठे होंगे कॉमन रीति से तो थोड़ा डांस करेगी, और वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो वो लास्ट से डांस करेगी। तो यहां भी ऐसे है, मुरली जब तुम बच्चे सुनते हो, इन सन्मुख सुनने की बात और है, एक्ट भी देखते हो ना उस समय, डायरेक्ट देखते हो एक्ट देखते हो। और बात का मतलब यही है, क्योंकि कोई गीत बजता था मिसाल के तौर पर, तो बाबा का चेहरा देखने जैसा होता था। ये गीत जब बजता था, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, और बाबा का चेहरा उस समय इतना प्यार वाला और जिगरी, तो प्रभु शब्द को राह दिखाओ प्रभु जैसे हृदय से बाबा बोल रहे, तो वो जो बाबा के एक्ट, उस समय का चेहरा, उस समय का शक्ति का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, वो मुरली पढ़ने में दूर बैठे थोड़ी आएगा। इसीलिए अंतर है। ये भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था, डांस कोई वो नहीं है, वास्तव में ये ज्ञान की डांस है। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं, लहर के ऊपर लहर, एक लहराई दूसरी लहराई तीसरी लहराई, ज्ञान का सागर, गहराई भी है तो ऊंचाई भी है, आनंद भी है। अब उसमें भी ज्ञान का आनंद लेने वाले भी तो कोई कोई होते हैं। वास्तव में तो ये ज्ञान की डांस है। तो शिव बाबा खुद बताते हैं, मैं ज्ञान डांस करने आता हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। तो अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती है। ये है ज्ञान की मुरली, इसको फिर म्यूजिक भी कहेंगे, डांस भी है तो म्यूजिक भी है, और कोई काठ की मुरली नहीं है। ए पढ़े पतित पवन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे, या लकड़ी की बंसरी बजाएंगे। जैसे श्री कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते, ये किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को ये बात बुद्धि में नहीं आएगी। ज्ञान डांस भगवान करते हैं, ये ज्ञान की मुरली है, ये कोई काठ की मुरली नहीं है, सोने की मुरली नहीं है। आने वालों में भी नंबर वार पद पाते हैं, जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो, कल्प पहले माफिक बाप आते हैं, और आकर के बच्चों को सब राज खोल करके बताते हैं, क्यों आता हूं, कब आता हूं, क्यों नहीं द्वापर में आता। कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। हर एक ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। एक्यूरेट ड्रामा है एक्यूरेट टाइम पर आऊंगा ना, जो कुछ सत्युग में हुआ था फिर वही होगा अब कलयुग के अंत में। कितनी अनेक प्रकार की योनियां है, यानी जीव जंतु पशु पक्षी जल जल में रहने वाले थल पर रहने वाले। सत्युग में इतनी योनियां थोड़ी होंगी, जानवर थोड़े ही होंगे, वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है। और वो तो बाबा ने कहा था फर्स्ट इस मुरली में नहीं है पर फर्स्ट क्लास है, गौ में भी फर्स्ट क्लास होंगी, इतनी फर्स्ट क्लास होगी जो उनका गोबर भी इतनी ताकत वाला होगा, जो खेती बहुत अच्छी होगी क्योंकि हरियाली बहुत है, अनाज बहुत है। यहाँ तो बेचारी प्लास्टिक खाती है, कूड़े के ढेर में से थोड़ा चुग के खाती है, तो दूध कैसा होगा, बीमार करेगा या हेल्दी बनाएगा। तो वहां तो इसलिए जो वहां के जानवर भी फर्स्ट क्लास सुंदर होंगे। सचिव में तो इतनी वैरायटी नहीं है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं। सचिव में तो वो धर्म थे ही नहीं, एकादी सनातन देवी देवता धर्म था, जो सतयुग में थे फिर सतयुग में ही देखेंगे। जो सतयुग था तो सतयुग आएगा तो सतयुग को देखेंगे। सतयुग में कोई छीछी गंध करने वाली चीज हो न सके। चिड़िया थी ना तो वो गंध कर देती थी तो या शोर मचाती थी, बाबा ने कहा सतयुग भैया ऐसी चिड़िया भी ऐसी नहीं होती। अच्छा तो गंध करने वाली छीछी चीज कोई हो न सके। उन देवी देवताओं को कहते हैं भगवान भगवती, और कोई भी खंड में कभी भी किसी को गॉड गॉडेस नहीं कह सकते। तो वो देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे, उनका कितना गायन है, यानी सुख का गायन है, सुख की दुनिया थी, तन मन धन तंदुरुस्ता निरोगी कंचन काया थी, उसका गायन है, गीत है धीरज दर मनवा धीरज दर। तो तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया, तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है, और ये भी जानते हो कितना कम है, हम इतने मार्क से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलानी अच्छा सर्विस कर रहे हैं, हाँ सर्विस करने वाले भी, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रह चाहिए तूफान आदि ना आए, माया अच्छी अच्छी बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है, स्थापना कर ली नई दुनिया की, हो गई कार्य पूरा हुआ फिर तो जाना ही है, इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये राज बच्चे को ही बाबा समझाते हैं और बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, हमारा मुख्य पार्ट है, नशा चढ़ता ही हम मुख्य पार्टधारी है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितनी प्योरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी, कल की तो बात है, फिर दूसरी बात कल जो कल माना सतयुग में हमने ही एक खेल में पार्ट बजाया था। 5000 वर्ष के बाद हर 5000 वर्ष का पार्ट मुंडा हुआ है। अब हम सारा चक्कर लगा करके आए हैं, अब फिर हम बाबा से योग लगाते हैं तो जो तमो प्रधान बन गए वो खोट निकलता जाता है। तो बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा, बाप कहा तो वरासत भी याद आएगी। इसलिए पहले पहले तो अल्लाह को जानना है। बाप कहते हैं तो मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ ज्ञान जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का ज्ञान है, रियलाइजेशन। बाबा फिर भी है तो 1 सेकंड की बात समझाने की, पर समझते हैं बाबा को धीरे धीरे दोबारा, फिर भी समझाना पड़ता है, समझाते रहते हैं। तो हमको तो धीरज देता है, तो सबसे ज्यादा पेशेंस तो बाबा को है। हमको रोज समझाता है, हम रोज भूल जाते हैं, भूल करते भी हैं, तो भी बहुत प्यार से और पेशेंस से हमको स्वीकार करते हैं और समझाते हैं, समझाते ही रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट्स है मन मना भव, मुझे याद करते रहो, मेरे जैसा मन बनाओ। इसी बात में ही विघ्न पड़ते हैं और देह अभिमान में आने से फिर तो अनेक प्रकार के गुटके, अनेक प्रकार के कंफ्यूजन, अनेक प्रकार के अप एंड डाउन, तो वो योग में रहने नहीं देंगे। डाउट आएगा, कंफ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, योग लगेगा ही नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहां ना कहां भागती जाती, भटकती रहती है। भक्ति का अनुभव तो सभी को है ना, ज्ञान का अनुभव भी है, भक्ति की बात याद ना भी याद हो, अभी क्या एकाग्र मन से याद करके बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं इस जन्म की बात है, इसी जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट के जन्म को भी समझ सकते हो। एकाग्रता कितनी है, लगन कितनी है, बच्चे को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की, ये हॉबी बनाओ। सेवा की हॉबी पीछे पहले याद की हॉबी, जितना याद करते हैं उसका प्रूफ क्या है, खुशी बढ़ती है, नई नई बातें मिलती है, बाबा से मुलाकात और बात होती है। साथ साथ तीसरी हॉबी याद करना है, खुश रहना है, तीसरी हॉबी है दिव्य अलौकिक कर्म करना, मनमना भाव की हॉबी, अनेकों को सुख देने की हॉबी और दिव्य अलौकिक कर्म करना। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनाते हो, मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तो इस हॉबी को कौन सी हॉबी कहेंगे? इस हॉबी का टाइटल क्या है? याद दिव्य कर्म, दूसरी आत्मा को सुख देना, मन मना भाव में स्थित रहना, ये रूहानी हॉबी है। बाप समझाते हैं नॉलेज तो बड़ी सहज है, कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है पर माताओं का भी गायन है। अधर कुमारी, फिर कुमारी कन्या, कुमारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है। वो कुमारी कन्या के नाम से ही ये नक्की लेख, उसकी माँ ने, ये तो कहानी तो आपने सुनी होगी, तो कुमारी कन्या का मंदिर भी है यहाँ पर, अधर कुमारियों का मंदिर भी है। अब तो क्योंकि यहीं बाबा ने मंदिर बना दिया, पहले शुरू शुरू में हम जब आते थे पार्टी को सब जगह ले जाते थे, यहाँ बाबा कहते हैं कुमारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है, उनको कोई बंधन नहीं है। अब माता है अधर कुमारी, कुमारी थी, शादी हो गई तो कुमारी का टाइटल तो खत्म हुआ, पति तो भिकारी बना देते हैं, तो कुमारी नहीं भिकारी हो गई। ये बाप को स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगार करते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित सब कुछ भूल जाओ। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, वर्षा लेंगे जरूर, हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है। आगे तो ये बाबा है, बाबा ने कहा युद्ध तो है ही है, हम युद्ध के मैदान में है, तो पांडव सेना आर्मी है, माया तो पहले तो बाबा इन फ्रंट में है, ब्रह्मा बाबा, माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, बहुत आकर के फिर अपने तूफानों की कहानी सुनाते हैं, पूछते हैं बाबा ये होता है, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे ये तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं ना, अंत में। तो बाबा ने कहा परंतु बाबा ने बता दिया ना, तुम तूफान नहीं समझते उसको, तूफान से रियलाइज नहीं करते हो, सीखते नहीं हो, तो बार बार तूफान आते। कर्म श्रेष्ठ नहीं कर सकते हो फिर, इसीलिए अंत में तुम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। तूफान आना कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हुआ था, ड्रामा में पार्ट बजाया था, अब वापस घर जाते हैं। तो जो बाबा ने युक्तियां बताई हैं तो तूफानों को जीत लेंगे ना, तूफान को तोहफा समझो, परिस्थिति को पपेट शो देखो, दूसरों के संस्कारों को देखो। डिज्नीलैंड में हो, मिक्की माउस का खेल चल रहा है, तो तूफान तोहफा बन जाएंगे ना। तो बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो नरक है, कहते भी है कि लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे, तो उसका अर्थ तो नहीं समझते। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं, पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो दूध का तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा, और अभी तो वो नेपाल में बेशक विष्णु का तालाब मंदिर है विष्णु की, इतना बड़ा तालाब तो है जितनी ये स्टेज है, उसमें विष्णु लेटे हुए है और पानी इतना गंदा कीचड़ कहा का खा। तो जो पहले बनाया तो पवित्र था, वो जल था, अथवा दूध था, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उसमें तो बहुत ही सस्ता ही थी, दूध महंगा नहीं था। बाबा का सब देखा हुआ है बराबर। ये भारत कितना पवित्र क्षीर सागर था, क्षीर दूध को सिंधी में दूध को खीर कहते हैं, वैसे क्षीर सागर सिंधी शब्द संस्कृत शब्द भी है, पवित्रता प्रॉस्पेरिटी। दूध घी की नदियां थी, सचमुच ऐसे होता था क्या? दूध की नदियां थी तो गऊए कहां कड़ी हुई थी, यहां से दूध आता जाता था। घी उसको मक्खन का निकाल के घी कौन बनाता था? ये तो एग्जाम्पल है, ऐसे सचमुच नहीं कि घी की नदियां दूध की नदियां बहती, यानी प्रॉस्पेरिटी थी, प्योरिटी थी, पावर थी। मीनिंग समझने का है, अगर ऐसा हो अब घी से पानी से स्नान करेंगे उसमें घी और दूध होगा कैसा होगा, फिर भी पानी चाहिए साफ करने के लिए। तो बाबा कहते हैं ये तो महिमा क्या के लिए, प्रॉस्पेरिटी थी, प्योरिटी थी, बेहद था, कॉन्स्टेंट फ्लो था। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तो तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम ज्ञान की दृष्टि से देखते हो। ऐसे सचमुच पानी घी और दूध की नदी की बात नहीं, अब तुम्हारी बुद्धि में समझ मिली है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, हम फिर स्वर्ग में आएंगे, वहां सब कुछ नया नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख के बहुत खुश होता था और बहुत प्यार से रखता था, पर ये नहीं समझता था कि मैं ये बनूंगा। ये तो ज्ञान आप बाबा को मिला है, तुम ब्रह्मांड और सृष्टि के, तुमको आदि मध्यंत का ज्ञान है। बाबा आप ज्ञान देते हैं, जानते हो तुम चक्कर कैसे लगाओगे। हम सो स्वाम का ज्ञान देते, बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, धीरज धर मनवा धीरज धर। शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार देखते हो विनाश सामने खड़ा है, तुमको तो तीसरा नेत्र मिला है ज्ञान का। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को तुम अच्छी तरह से बुद्धि के नेत्र से जानते हो। ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है, खुशी होती है। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन के पढ़ाते हैं, है बेहद का बाप हमारा टीचर है, परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहते याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। रामतीर्थ स्वामी रामतीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे, मैं तो उनका भी पुरुषार्थ था, उनको साक्षात्कार हुआ खुशी हो गई। और साक्षात्कार से क्या प्राप्ति, मिला तो कुछ नहीं ना, यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी है क्योंकि तुम जानते हो 21 जन्मों के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। थ्री बाबा ने कहा, एक्चुअली 3/4 गोल्डन सिल्वर कॉपर तक, 3 हिस्सा सुख में रहते हो, अगर आधा आधा हो तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख और कोई देख नहीं सकता। कौन सा सुख है, कौन सा सुख दुनिया नहीं देखती है और हम अनुभव करते हैं, परमात्म गोद में पलने का सुख। संगम जुग पर बाबा से वर्षा लेने का सुख, इसलिए तो अपार सुख है। महान दुख में तो दुख का पता ही नहीं, महान सुख जब है तो दुख का नाम निशान नहीं, पता ही नहीं है। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो। अभी हम दुख से निकल सुख में जा रहे हैं, सुख की तरफ हमारा मुंह है और दुख की तरफ लात है, यानी उसको हम बैक फेस है और वो जैसे बैग, वो जैसे डेड बॉडी को फिरा देते हैं ना शमशान की। इस दुनिया को लात मारनी है, क्या मतलब है, यानी बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है अब वापस घर जाना है, बहुत पार्ट बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतनी कट निकलती जाएगी, जितना बाप की सर्विस करके, सर्विस पर रह करके आप समान बनेंगे उतना बाप का शो कर सकेंगे, बाबा का परिचय दे सकेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है तो घर को भी याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता है, अब कहाँ नया मकान और कहाँ पुराना मकान। पुराना मकान तो टूटना ही है, कितना रात दिन का फर्क है। वो सतयुगी दुनिया 6 सागर और ये दुनिया हूबहू जैसे विश्व वैतरणी नदी है। एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं, बाबा भी आया हुआ तो लड़ाई शुरू हो गई विकारों के कारण। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, माथा मारते हैं। माताएं बेचारों को या भाइयों को साथी साथ नहीं देता, कलप कलप पहले भी अत्याचार हुए थे, उसकी यादगार अब भी गाई जाती है। देखते हो ना कितना पुकारती है। ये ड्रामा का पार्ट बज रहा है, ये बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई, वो यादगार है। पवित्रता की द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई, यादगार बनी हुई। ये सब बातें समझने की है, गाते भी हैं, पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग था फिर नरक कैसे बना। आओ तो हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। ये बृहद की हिस्ट्री ईश्वर जाने और ईश्वर के बच्चे जाने, हम ही जानते हैं। पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का वर्षा लेंगे, आओ आकर के समझो। टॉपिक बहुत है, तुम बच्चों का दिमाग तो फुल भरपूर हो गया है। ज्ञान में खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है, बाप से नॉलेज मिल रही है, लक्ष्य भी है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितनी बुरी बातें समझ लेती है, बच्चों को सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझाना है। ये 84 का चक्कर है, मनुष्य को क्लियर करके समझाना है। अब स्वर्ग व पावन दुनिया, आपकी दुनिया को स्वर्ग या पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज। वो सुखधाम ये दुखधाम, वो स्वर्ग ये नरक। ये चक्कर कैसे फिरता है ये समझाने में सहज है, समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ करके याद में रहे ये बातों से नहीं होता। तो यही करना है, याद में रहना है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्के लड्डे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी देह और दुनिया को, देह और दुनिया को बुद्धि से भूल। याद क्या करने, बाप और घर को याद करने, सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरी पॉइंट, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण करके दिमाग को भरपूर करना है, भरपूर रखना है। दे अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। वरदान, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए क्या चाहिए? अचल, अडोल और एक रस स्थिति। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थिति नहीं हो, नहीं हो पाते, तो बाप दादा के दिल तख्त पर भी स्थिति नहीं रहती, स्थित नहीं हो सकते, अचल अडोल नहीं है। तो इसीलिए अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन के स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल पर विराजमान नहीं हो सकेंगे। चूज करो क्या करने। स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को बाप इस तख्त पर बार बार डगमग न हो, अड्डे होते रहो तो बाप दादा के दूर तख्त पर विराजमान होंगे। स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारा, ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, मान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करने, दूसरा मुख द्वारा सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं, एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो, चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दाता बन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर, यही है बाबा की पालना का रिटर्न। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी को यह जानकारी दे रहे हैं कि आज पांडव भवन में एक भट्टी का छोटा ग्रुप आ रहा है मेहसाना से। कोई आए हैं मेहसाना वाले, हाथ उठाओ अगर कोई आए हैं क्लास में बैठे हो। नहीं, नजदीक का सेंटर है ना, तो दिन में आ जाएंगे दोपहर तक। और इनकी तीन दिन की भट्टी है और हमारे बीच में तारा बहन भी है, आप भट्टी संभालने के लिए आए हुए हैं और बस ये जानकारी आप सभी को दे रहे थे। अभी बाबा की याद में बैठ के क्लास संपन्न करें।